ऋग्वेद की एक ऋचा है, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधिविश्व निषेध यस्तन्न वेद की मृचा करिष्यति यहि तद् विदुष इमे समास। अर्थात ऋचाओं के परम अक्षर ओम को जिसमें सारे देवता निवास करते हैं, जिसने उस परम अक्षर ओम को नहीं जाना उसने वेदों को पढ़कर क्या किया। ये जो ऋग्वेद की ऋचा है ये बड़ा स्पष्ट संदेश दे रही है कि हम संसार में आकर जितना भी अध्याप का स्वाध्याय करते हैं, जितना भी सत्संग का श्रवण करते हैं, जितना भी हम दान पुण्य करते हैं या जो भी अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, उन सब का एक ही उद्देश्य है कि अंतर्यामी ईश्वर को, जिसको वेद में ओम करके कहा गया, उसको जानने के लिए ही ये सारा क्रियाकलाप, अन्यथा अपने आप में इस क्रियाकलाप का कोई महत्व नहीं है। तो कई बार हम लोग भी यही गलती कर जाते हैं कि सेवा भी करते हैं, सत्संग का श्रवण भी करते हैं, ईमानदार बनने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सिमरन में फेल हो जाते हैं। तो अब बताइए ये सारे क्रियाकलाप का क्या परिणाम निकला। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कोई विद्यार्थी साल भर खूब स्टडी करे, खूब मेहनत करे, लेकिन एग्जाम ना दे, कहां पहुंचेगा, क्या प्राप्ति होगी इसको। इसीलिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि मैं जो कुछ भी सत्संग श्रवण करता हूं, शास्त्र का स्वाध्याय करता हूं और जो मैं संसार में अच्छे कर्म करता हूं, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि मेरा मन ईश्वर के सिमरन में लग जाए, और इसका कोई उद्देश्य नहीं। क्योंकि अभी आप सुन रहे थे कि सुख कहां है, सुख ईश्वर में, जिसको हम शांति कह देते हैं, जिसको हम आनंद कह देते हैं, वो ईश्वर में, वो संसार में है ही नहीं। महाजी कहते थे प्रेमी ही संसार में सुख और दुख है, सुख का अपोजिट दुख, दुख का अपोजिट सुख, और ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकता। इसीलिए आपके हजार जन्म क्यों ना हो जाएं, लेकिन आपकी स्थिति इसी प्रकार बनी रहे, अर्थात विचलित। तो मनुष्य इस द्वंद्व से मुक्त होने के लिए आया है, और उस मुक्ति का जो साधन है और उस मुक्ति का जो स्रोत है, स्रोत ईश्वर है उसका, जो इस देह के अंदर स्थित है, सबके देह के अंदर स्थित, और साधन उसका सिमरन। तो इस साधन को मैं यदि ना अपनाऊं तो किसी भी जन्म में मैं आनंदित नहीं हो सकता, हर जन्म में सुखी दुखी होता रहूं, अर्थात मानसिक बेचैनी को लेकर जीता रहूंगा, पूरा जन्म मेरा निरर्थक ही चला जाएगा। खाया पिया सोए, दिन भर कमाई करी, फिर खाया पिया सोए, परिवार पाला, सब कुछ किया, लेकिन इस बेचैनी से कभी भी मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। तो इसलिए मां जी की वाणी भी कह रही है, नाम तुलना यज्ञ तप तीर्थ और पुण्य दान, नाम तुलना यज्ञ तप तीर्थ और पुण्य दान, नाम छुड़ावन हार है जुग जुग सुन फरमान। ये वाणी बड़ा स्पष्ट है, आप यही तो कर सकते हो। यज्ञ है, तप है, तीर्थ है, दान पुण्य है, यही अच्छे कर्म। लेकिन इस मन की बेचैनी से छुड़ाने वाला केवल प्रभु का नाम है, जुग जुग सुन फरमान। और ये मेथड, ये विधि, ये रास्ता, ये युगों युगों से चलाया है, अर्थात आदिकाल से चलाया है। तो प्राचीनतम युग हम जानते हैं, जहां के हिस्ट्री मौजूद है, उसको वैदिक काल कह देते हैं। तो ऋग्वेद की ऋचा साफ कह रही, जिसने ओम को नहीं जाना उसने वेदों को पढ़कर क्या किया। वेदों को पढ़ना, वेदों को समझना, वेदों को सुनाना, वेदों को सुनना, इसका तो मतलब ही नहीं बनता। तो इसीलिए सत्पुरुष सबसे ज्यादा जो जोर देते हैं वो नाम सिमरन पर ही देते हैं। मन तू साचा हो रहो सिमर के साचा नाम, मंगत विपता जग घनी राम देवे विश्राम। इस संसार में बड़ी गहरी विपत्ति है, बड़ी घनी विपत्ति है, केवल राम ही इस जीव को उस घने क्लेश से विश्रांति दे सकता, छुटकारा दे सकता। तो अब बताइए, मेरा जो मन है वो चंचल है, इसमें वासना के अंबार इकट्ठे हैं, इसलिए सिमरन करने बैठूं भी तो मेरा सिमरन हो ही नहीं पाता, क्योंकि मन के अंदर विचारों की बाढ़ आई रहती है, विचार मेरा पीछा छोड़ते ही नहीं। तो मन को यदि कोई सच्चा कर सकता है, साचा कर सकता है, साचा का मतलब मन को कोई पवित्र कर सकता है, तो कहते हैं कि सिमर के साचा नाम। सच्चे नाम को जप कर ही, सच्चे नाम का स्मरण करके ही कोई व्यक्ति इस मन को पवित्र कर सकता है। और मन की पवित्रता का मतलब एक ही होता है अध्यात्म में, कि मन को संकल्प रहित कर दे। इसलिए रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि पवित्र मन, पवित्र बुद्धि और ईश्वर एक ही चीज। सिमरन करते करते तेरी यदि एक दिन ये हालत हो जाए कि मन के अंदर संकल्प का उठना बंद हो जाए, उस स्थिति में इस जीव को पता लगता है कि ईश्वर के अलावा अन्य कोई सत्ता देह के अंदर और देह के बाहर, ईश्वर के अलावा अन्य कोई सत्ता है ही नहीं। जिस संसार में मैं वस्तुओं की इच्छा करता था, जिस संसार को देख देख कर मैं बेचैन होता था, अपने लक्ष्य निर्धारित करता था, ये तो झूठा है, ये तो सारा का सारा मेरे मन के संकल्प के कारण दिखाई पड़ रहा था। संकल्प जब खत्म हुआ तो ये देह भी और ये संसार भी उस सत्ता में बदल जाती है जिस सत्ता का नाम ईश्वर। ऐसी वाणी नहीं कह रही है कि सब जग रूप ब्रह्म का भेद धर्म ना हो, वाणी ऐसे ही नहीं कह रही, विज्ञान है, ये सारे ऋषियों का, सारे भक्तों का अनुभव है। और जिस ईश्वर का अनुभव ये जीव करता है मन भक्त होने के पश्चात, ये अनुभव से जानता है कि उस ईश्वर में जो शांति है, जो आनंद है, वो कभी भी किसी काल में भी इस संसार में मैंने भोगा ही नहीं। क्यों नहीं भोगा? क्योंकि वहां था ही नहीं। इसीलिए मनुष्य के जन्म का, मनुष्य के जीवन का सबसे यदि कोई इंपॉर्टेंट काम है, सबसे कोई यदि आवश्यक काम है, तो वो ईश्वर का स्मरण है। इसलिए महाराज जी ने समतावास में लिख कर दिया कि सिमरन से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी। अर्थात जिस उद्देश्य के लिए तुझको मानव जन्म दिया गया था, वो उद्देश्य ही तेरे जीवन का खत्म हो गया। अब बताइए, जिस उद्देश्य के लिए आपको ये देह दी गई है, उस उद्देश्य के लिए इस देह का आपने उपयोग ही नहीं किया, विचार करो आपको क्या कहा जाए। इसलिए शास्त्र, सारे ही शास्त्र एक सुर से कहते हैं कि तूने मानव देह का उपयोग किया है। तूने किस देह का उपयोग किया? पशु देह का उपयोग किया। अर्थात मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी तूने इस देह से वो कर्म किए जो पशु करते हैं। मुझे ये बात सुनकर बड़ी शर्म आती है, मेरी समझ में नहीं आती। इतना बड़ा विश्लेषण अभी अभी आपने सुना कि हम संसार में सुख के लिए जीते हैं, संसार को सुखरूप समझते हैं, इसीलिए उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। और सत्पुरुष कहते हैं संसार में सुख है ही नहीं। यदि किसी को मिठाई दी जाए खाने को, उसमें बराबर का नमक मिला दिया जाए, तो क्या कहोगे आप? ये कोई मिठाई है खाने लायक है कोई? अरे जो इंद्रिय सुख हम संसार में भोगते हैं, उसके बराबर का दुख भी साथ में मिला दिया जाए, तो क्या सुख हुआ? क्योंकि हम विचार नहीं करते, शास्त्रों के मार्गदर्शन अनुसार सोचने की कोशिश नहीं करते, इसलिए पूरा जन्म हमारा भ्रम में ही चला जाता है। सुख की कोशिश करते हैं और दुख झेलते रहते, पूरी जिंदगी हमारा हमारी यही दुर्दशा होती। इसीलिए जो संस्कार बेचैनी के मैंने इकट्ठे किए हैं, तो जिस समय इस देह की मौत आती है, तो उन्हीं बेचैनी के संस्कारों को लेकर, उस बेचैनी को लेकर मैं इस देह का त्याग कर देता हूं। और जब नई देह का निर्माण होता है मेरे ही मन के द्वारा, मेरे ही मन के संस्कारों के अनुसार, तो बताइए वहां क्या मिलेगा आपको? तूने संस्कार ही अपने बेचैनी के इकट्ठे किए हैं, तो अगले जन्म में तुझको बेचैनी मिलनी है क्या मिलना? इसलिए सत्पुरुषों को कोई वहम नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह से संसार को रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करने का मतलब कि संसार में सुख है, इस भावना को वो पूरी तरह से आपके अंदर से मिटा देते हैं। यदि वास्तव में आपने गुरु धारण किया है और उसके वचनों पर आपने, उसके ज्ञान पर आपने गहरा विचार किया है, आपके मन से यह धारणा मिट ही जाएगी कि संसार में सुख। ऐसा व्यक्ति सिमरन के लिए जीवन व्यतीत करता है, ईश्वर प्राप्ति के लिए जीवन व्यतीत करता है, पूरे होश में ये मानव जीवन व्यतीत करता है। लेकिन एक बाधा आती है हमारे, तो क्या बाधा आती है कि नाम, जिसको मंत्र भी कहते हैं, तो मंत्र का मैं सिमरन करने बैठता हूं तो कोई कंप्लेंट करता है ध्यान किसका करूं। वो सोचता है कि जाप तो मैं मंत्र का करूं और ध्यान किसी ईश्वर के रूप का करूं, तो समझ ही नहीं आती बात। इसलिए सतपुरुष इतना बारीक विज्ञान आपके सामने पेश कर रहे हैं। वो आपको जीव करके संबोधन कर रहे हैं। मैं अपने आप को इस मानव देह करके संबोधन कर रहा हूं, क्योंकि इस मानव देह का मैंने नाम रखा था, इसका रूप मुझे पता है। उसी प्रकार ईश्वर का भी मैंने नाम रखा था, उसका रूप भी मुझे पता है। तो मैं सोचता हूं कि मंत्र का जाप करता रहूं और रूप का ध्यान करता रहूं। यह दुविधा हमारे सामने क्यों खड़ी होती है? ये इसलिए खड़ी होती है क्योंकि हमने सत्पुरुषों को बात को उस प्रकार से समझने की कोशिश ही नहीं की जिस प्रकार से वो हमको समझाना चाह रहे। वो कहते हैं जीव, मैं उसका अर्थ करता हूं मनुष्य। आप विचार करके देख लीजिए, आप यही करते रहे, जहां वो वाणी में जीव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आप उसको मनुष्य शब्द से उसको सिद्ध कर देते। तो जीव ने सिमरन करना है, मानव देह ने सिमरन नहीं करना है। अभी भी मैं सिमरन किसका कर रहा हूं? मैं भी सिमरन करने बैठ भी जाऊं, हम में से जो भी सिमरन करते हैं उनका बड़ा स्पष्ट अनुभव है कि जब मैं सिमरन करने बैठता हूं, सिमरन करना तो मैं मंत्र का चाहता हूं, लेकिन सिमरन होता किसका है? मन के संकल्पों का सिमरन होता है। अब बताइए इसमें देह कहां से बीच में आ गई? जानने वाला मैं हूं, सिमरन करने वाला मैं हूं, और सिमरन मैं किसका करना चाह रहा हूं? मंत्र का सिमरन करना चाह रहा हूं, लेकिन सिमरन हो किसका रहा है? मन के संकल्पों का सिमरन हो रहा है। और मन के संकल्पों के सिमरन को देख कर या मन के संकल्पों का सिमरन करके मेरी क्या हालत होती है? सिमरन करने वाला अच्छी तरह से जानता है कि वो बेचैन हो जाता है। मन मेरा है, संकल्प मेरे हैं, फिर मैं बेचैन क्यों हो रहा? उसका कारण यही है कि मेरे मन के जितने भी संकल्प हैं 100% वो सब सांसारिक संकल्प हैं। वो तेरे हैं ना, तूने उनका बीज बोया है, उसकी फसल तैयार की है। अब सिमरन करने बैठा है तब तुझको पता लग रहा है ये तो मेरे लिए मुसीबत है। सब कुछ तो पहले से ही कहते रहते हैं तेरे मन का हर संकल्प तेरे लिए मुसीबत, इस संकल्प से मुक्ति के लिए मानव जन्म उसको दिया गया, लेकिन मेरी समझ में आती कहां? अब सिमरन करने बैठा हूं तब बात समझ में आ रही है। वास्तव तुम बातें तो सत्य है कि मेरे ही मन के संकल्प मेरे लिए मुसीबत है, मेरे लिए अशांति का कारण है। ईश्वर के नाम का सिमरन मुझको नहीं करने दे रहे, और सेवन कर भी रहा हूं तो वहां भी दो संकल्प खड़े हैं, नाम और रूप के। इसी को माया कहा जाता है। सारा संसार का जो अनुभव है नाम और रूप के रूप में, इसलिए ईश्वर को भी मैं नाम और रूप से जोड़ देता हूं। अब बताइए, एक हो गया नाम, एक हो गया रूप, दो चीजें हैं नहीं? और नाम और रूप के साथ फिर गुण और कर्म और जुड़ जाता है। जिसका नाम होगा जिसका रूप होगा उसके गुण भी होंगे और उसकी प्राप्ति के लिए कर्म भी होगा। तो नाम रूप गुण और कर्म में मेरा ध्यान बढ़ जाता है और नाम से हट जाता है। इसीलिए उपनिषद कह रहा है कि नाम ब्रह्मेति उपासना, नाम को ब्रह्म जानकर उपासना करनी चाहिए। और ब्रह्म क्या है? सब जग रूप ब्रह्म का भेद भ्रम न हो, सारा संसार ही ब्रह्म का रूप है, यहां भेद नाम की वस्तु है ही नहीं, अर्थात नाम रूप की वस्तु यहां पर है ही नहीं, ये मेरे मन का भ्रम है। इसीलिए सत्पुरुष के की कृपा से जो मंत्र प्रकट होता है जिसको हम नाम कहते हैं वो ब्रह्म रूप होता है। इसलिए उपनिषद कह रहा है कि नाम ब्रह्मेति उपासना, नाम को ब्रह्म जानकर उपासना करनी चाहिए। ओम क्या है? ओम ही नाम ही है। कुछ लोग ओम ओम के द्वारा भी ईश्वर की उपासना करते हैं, उनके लिए ओम ही ब्रह्म है। उसके अलावा कोई ब्रह्म नहीं जिसकी मैंने जिसकी ओर ध्यान लगाना है, जिसकी कल्पना करनी है। वो सब कुछ मंत्र स्वयं है। इसीलिए वाणी कह रही है त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दाता। सर्व सिद्धि का मतलब होता है कि मन के अंदर वासना का खत्म हो जाए, मन के अंदर डिजायर्स का उठना ही खत्म हो जाना, उस स्थिति का नाम है सर्व सिद्धि। इसलिए वाणी कह रही है कि कलह क्लेश सब दूर होए। कलह क्लेश हम सब जानते हैं कि कहां होते हैं? मन के अंदर होते हैं। और किस रूप में होते हैं? मन के अंदर जो संकल्प उठता है, जिसको सिमरन के समय मैं देखता हूं जानता हूं, उसी का नाम कलह क्लेश। और कलह क्लेश कोई नहीं। ये भ्रम बना हुआ है कि कलह क्लेश संसार में है ना, कलह क्लेश मेरे मन के अंतर्गत है, इसलिए इलाज भी इसका वही होना है। और जिसने मन के अंदर उस कलह क्लेश का इलाज कर लिया, उसकी समाधि लग जाती है, अर्थात आनंद में वो स्थित हो जाता है। संसार तो वैसे ही है, उसके लिए कहा गया उसके कलह क्लेश। किसी सत्पुरुष को आपने संसार में दुखी देखा है क्या? सत्पुरुष संसार में दुखी नहीं होता, हम संसार में दुखी होते, क्योंकि हमारे मन ने संसार को सुख का स्रोत समझ रखा है। ये कलह क्लेश का स्रोत, मैंने गलती से इसको सुख का स्रोत समझ रखा, इसीलिए पूरा जन्म मेरा इसी कलह क्लेश में बीत जाता है। वाणी आपको कह रही है कि कलह क्लेश सब दूर होए पाए ज्ञान तत् योग। ज्ञान तत् ब्रह्म को कहते हैं, इस ब्रह्म से तेरा योग होगा, संयोग होगा, मिलन होगा। मंगत तत् अक्षर नित गाइए प्रभु दर्शन होए संयोग। इन तत् अक्षरों का, तत् कहते हैं ईश्वर, ईश्वर सत्ता। तो जिन जो इस ईश्वर रूप मंत्र का सिमरन करेगा, उसको अंतर्यामी ईश्वर का अनुभव प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि ये मंत्र उस अंतर्यामी ईश्वर का ही मैनिफेस्टेशन है, उसी का ही ये अवतरण है, जो कि मंत्र रूप में हमारे कल्याण के लिए प्रकट हुआ। इसीलिए चाहे आप उपनिषद पढ़ लो, चाहे महाराज जी की वाणी पढ़ लो, या अन्य किसी सत्पुरुष की बात सुन लो, आप एक ही बात कहते हैं कि गुरु ईश्वर मंत्र एक ही चीज, हम एक नहीं समझते। हजार बार ये बातें सुनने के बाद भी हम एक नहीं समझते, क्योंकि हम कहते हैं ईश्वर तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मंत्र तो हमको लिखा हुआ दिखाई पड़ता है, ईश्वर तो सुनाई नहीं पड़ता, मंत्र कोई पढ़ता है तो हम कान से सुनाई पड़ता है, तो मंत्र ईश्वर कैसे हो सकता है? हम इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं। इसलिए एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है शास्त्रों में, इस मंत्र को प्रतीक भी कहते हैं, ईश्वर का यह प्रतीक। क्योंकि जो ईश्वर है उसका अनुभव मैं आज की स्थिति में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे मन के अंदर या मेरी बुद्धि के अंदर यह निश्चय बैठा हुआ है कि मैं देह हूं, और जब तक यह निश्चय आपका टूटता नहीं, तब तक आपके अंदर अंतर्यामी ईश्वर का बोध नहीं हो सकता। इसलिए यह सिमरन लंबा प्रोसेस है, दो चार दिन के सिमरन से नहीं होने वाला। अपनी बुद्धि की हालत तो देखो, तुम्हारा निश्चय कहां खड़ा हुआ है, और किस प्राप्ति की बात कर रहे हो तुम? कितना सत्संग तुमने सुना है? तुम्हारा निश्चय टूटा आज भी? नहीं टूटा। दिन भर के व्यवहार को देखो, पता लग जाएगा कि सारा व्यवहार मैंने शरीर बनकर ही किया, मुझे अपना होश नहीं रहा। इस गहरी बेहोशी में मैंने दिन भर का व्यवहार किया। फिर कहते हो सिमरन में मेरा मन लग जाए, ईश्वर मुझे प्राप्त हो जाए, ये कैसे हो जाए? इसीलिए ये विज्ञान थोड़ा बारीक हो जाता है। जब तक आप गहरा विचार करने की आदत नहीं डालोगे, शास्त्रों का मर्म आपकी समझ में आएगा नहीं। शास्त्र सुना तो सकते हो आप किसी को, पढ़े लिखे सीख के सुना सकते हो किसी को, लेकिन मर्म समझ में आएगा नहीं। ये चलकर ही समझ में आता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं, मैंने मुझे तो कम से कम नहीं मिला जिसने पढ़कर सीख लिया। पढ़ना सहायक है, सुनना भी सहायक है, लेकिन मंजिल चलने से तय होती है। तो जो चलने वाले लोग हैं उनके लिए ये वाणी कह रही है कि मंत्र खुद ईश्वर है। उसके लिए महर्षि रमण कह रहे हैं कि गुरु मंत्र आत्मा एक ही चीज है। अब बताइए, जब एक चीज है तो मंत्र का जब मैं सिमरन करता हूं तो मेरे अंदर एक ही भाव रहना चाहिए, या ये भाव बना रहना चाहिए कि मैं मंत्र का जाप नहीं कर रहा हूं, मैं ईश्वर का संग कर रहा हूं। और ये अजम्पशन नहीं है, जैसे मूर्ति को देख के मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ईश्वर ऐसा ही है, अजम्पशन है। और मुझे ये भी मालूम है ये किसने बनाई है, ये मनुष्य ने बनाई है, लेकिन मंत्र मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये प्रकट हुआ है, वो मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड है, वो मैनिफेस्टेशन ऑफ नाद है, मैनिफेस्टेशन ऑफ कुंडलनी है, वो ईश्वर का अवतरण है। इसीलिए मंत्र में वही शक्ति है जो शक्ति ईश्वर में, इसमें कोई भेद नहीं। इसलिए आपके अंदर की यात्रा कौन तय करता है? वो मंत्र रूपी ईश्वर ही अंदर की यात्रा तय करता है। आप कैसे तय करोगे यात्रा? आप तो जानते नहीं अंदर का मार्ग क्या। आपके मन के संकल्पों के संस्कार को कौन भस्म करता है? ये मंत्र ही भस्म करता है। आप संकल्पों का निर्माण कर सकते हो, आप संस्कारों का निर्माण कर सकते हो, संस्कार खत्म नहीं कर सकते। दुनिया के किसी मनुष्य में ताकत नहीं है संस्कारों को खत्म कर दो। संस्कारों में परिवर्तन तो कर सकते हो आप, लेकिन संस्कारों को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन ये ईश्वर रूप मंत्र में वो ताकत है कि आपके संस्कार को ये भस्म कर सकता है, खत्म कर सकता है। इसीलिए मेरे मन के संस्कार जो संसार के सुखों के संस्कार बने हुए हैं, संसार के भोगों के संस्कार बने हुए हैं, मैं जब संसार में गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार मर्यादा से चलता हूं, मर्यादित जीवन व्यतीत करता हूं, क्यों? क्योंकि मैंने सत्पुरुषों के वचनों के द्वारा, वाणी के द्वारा, सत्संग श्रवण के द्वारा ये बात सीख ली है कि संसार में चैन नहीं है, या इसको दूसरा नाम दे लें, संसार में सुख नहीं है। चैन उस स्थिति को कहते हैं जहां ना सुख है ना दुख, और जिसके जीवन में सुख है उसके जीवन में दुख भी। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल। इसीलिए सुख के लिए जो संसार में जी रहा है, उसको लक्ष्य करके जो परिवार का लालन पालन कर रहा है, वो मूर्ख जी है, क्योंकि वो कर ही कुछ नहीं रहा, वो जिंदगी केवल बर्बाद कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। अरे जब सुख के साथ दुख आना ही आना है और हर सुख दुख में बदल जाता है, तो बड़े सुख की तैयारी करी है तो बड़े दुख को झेलने के लिए तो तैयार हो जाए। क्योंकि सुख से ही दुख उत्पन्न होता है, महाराज जी ये कह रहे हैं। ये कैसा विज्ञान है, सुख से ही दुख उत्पन्न होता है। जिसने सुख का त्याग करना सीख लिया उसके दुख का त्याग स्वयं ही हो जाता है। और इन दोनों के त्याग की स्थिति का नाम ही आनंद है, शांति है, संतोष। तो मैं वो स्थिति प्राप्त करने चाहता हूं जिसको हम संतोष कहते हैं, जिसको तृप्ति कहते हैं। लेकिन मार्गदर्शन मैं कहां से ग्रहण कर रहा हूं, संसारियों से। वे खुद धोखे में है इसलिए मैं भी धोखा खा जाता हूं। इसलिए यदि मैंने अपने आप को दुर्गति से बचाना है और सदगति करनी है तो एकमात्र रास्ता है कि गुरु की बात को गहराई से समझने की कोशिश करें। और इसके लिए मुझे स्वयं ही प्रयास करना होगा, दूसरे लोग मेरी मदद कर सकते हैं। प्रयास मैंने खुद ही करना होगा, निर्णय अपनी बुद्धि का मैंने स्वयं ही बदलना होगा। जब मैं निर्णय बदलूंगा तभी सिमरन की जरूरत महसूस करूंगा और फिर मैं सिमरन को दिल से करूंगा। जैसे पैसा मैं दिल से कमाता हूं और पैसे में नुकसान हो जाए कैसी गहरी चोट मेरे अंदर बैठती है, ऐसा लगता है मेरी जिंदगी बर्बाद हो। तो सिमरन में जो फेल होता है उसके दिल पर भी ऐसी गहरी चोट पहुंचती है कि जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी यदि सिमरन में मैं सफल नहीं हुआ तो। इसलिए वो इस विज्ञान को गहराई से बार बार समझने की कोशिश करता है, सिमरन में मन लगाने की कोशिश करता है। वो सीखता है कि मंत्र स्वयं ईश्वर है, अंदर का सारा रास्ता इस मंत्र ने ही मुझको तय करवाना है। इसलिए सतमार्ग का जो रास्ता तय करवाता है उसी का नाम गुरु है। इसलिए ये अंतर्यामी गुरु आपका गाइड है, आपकी मंजिल भी है, आपका मार्ग भी है। इसलिए इस मंत्र को ईश्वर जानकर, लाइव गॉड जानकर इस मंत्र के अंदर मन को लगाना चाहिए। लेकिन इसमें एक बाधा बार बार आती है जिसे हम बच नहीं पाते, कोशिश करके भी नहीं बच पाते। तो बाधा एक ही है कि संसार में मेरे जीवन में जो भी घटनाक्रम बीतता है या जो भी भविष्य में बीतेगा या जो भी बीता है, मेरा अनुभव ये बताता है कि संसार में जो भी घटनाक्रम मेरे जीवन में बीतता है वो अनिश्चित है। आज मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला, इसीलिए उस अनिश्चय की हालत के कारण मेरे मन में बेचैनी बनी रहती है। क्योंकि हर चीज में मैं सफलता चाहता हूं, मन के अनुकूल चाहता हूं, लेकिन मुझको पता है ये कभी संसार में संभव नहीं है, अनुकूल भी होगा प्रतिकूल भी होगा, जिसको हम सुख दुख कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संसार का जो घटनाक्रम तेरे जीवन में आने वाला है उससे तू घबरा मत, इस प्रकृति के निजाम को समझ, ईश्वर के उस लॉ को समझ जो उसने इस प्रकृति को दिया है। वो तो क्या कानून है कि इस संसार में जो भी तेरे साथ होगा वो प्री डिसाइडेड है, वो अवश्यम भावी है, दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती। इसलिए तूने तैयारी करनी है, उसको सहन करनी है, और जो उसको सहन करता है ऐसे ही नहीं, ईश्वर आज्ञा में कि प्रभु दुख आया है तो ये तुमने ही दिया है, सुख आया है तो ये तुमने ही दिया है, मुझे किसी ने धोखा दिया है ये तुमने ही दिया है, मेरा किसी ने काम बनाया है तो ये तुमने ही दिया। तो जिसकी दृष्टि ईश्वर पर रहती है, जो ईश्वर को कारण करता समझता है, उसको भाग्य विधाता समझता है या प्रारब्ध का निर्माता समझता है, जिसके अनुसार मेरा जीवन ये व्यतीत हो रहा है, वो व्यक्ति संसारिक घटनाक्रम को ईश्वर हुक्म में देखना सीखता है और उसको बर्दाश्त करता है। इस बर्दाश्त के साथ जो सिमरन करता है वो सिमरन में सफल होता है। वास्तव में असली तप ये है, ईश्वर हुक्म में जीवन के सुख दुख को देखना और उसको सहन करना। ईश्वर से प्रार्थना नहीं करने, प्रभु ये दुख खत्म कर देना, वो कभी प्रार्थना नहीं करता। एक ही प्रार्थना करता है कि होवे दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार, इतनी शक्ति दे कि मैं तेरे हुक्म में बड़े से बड़े कष्ट को सहन कर सकूं। जब सहन कर सकूंगा तभी मेरे अंदर प्रभु की याद बनी रह सकेगी, नहीं तो प्रभु की याद तो मैं भूल जाऊंगा। संसार में मेरा काम बिगड़ा नहीं और मेरा मन बाहर भागा, कहां प्रभु की याद बनेगी। इसलिए जब तक इस विज्ञान को इसी प्रकार से आप नहीं समझोगे, मंत्र को ईश्वर नहीं समझोगे और जप को ईश्वर के साथ अपना मिलन नहीं समझोगे, आपके मन के अंदर प्रभु प्रेम पैदा नहीं होगा, आपसे आपका संगत नहीं बन सकेगा। इसलिए यह पूरा विज्ञान समझने की जरूरत है और इस विज्ञान के अनुसार जब मैं सेवन करता हूं तो एक दिन मेरे जीवन में जरूर ऐसा आता है जब अंतर्यामी प्रभु का मुझको अनुभव होता है और तब पता लगता है प्रभु में शांति है, संसार में अशांति। ओम नमः शिवाय।